ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना त्याग पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सुश्री आतिशी ने आज सुबह राजनिवास में उपराज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा। सुश्री आतिशी अपनी कालकाजी सीट बरकरार रखने में सफल रहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से त्यागपत्र देने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर विजयी हुई। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें जीती। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस बीच दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी।
दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी और जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है, दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही।
इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण राजस्व में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का नुकसान पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर देने में सरकार की विफलता के कारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात का प्रतीक है कि देश भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के असली मालिक दिल्ली के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली एक शहर मात्र नहीं है बल्कि यह एक लघु भारत है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा के अनुरूप है।
दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि समाज के हर वर्ग ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिला मतदाता भाजपा की ढाल बन गई हैं और नारी शक्ति से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए का मतलब ही सुशासन और विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की खिलाफत का नारा देने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी निकली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने भ्रष्ट आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में कल सुबह 11 बजे दूरदर्शन सहित विभिन्न मंचों पर पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों, तनाव से निपटने और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल, शिक्षा और सूचना प्रसारण तथा मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये विद्यार्थी प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बदलाव और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी।
हमने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। जो जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिख उनसे मिलने का समय मांगा। अपने पत्र में श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के भाजपा सांसद और नवनिर्वाचित 48 विधायकों के साथ वो उपराज्यपाल से मिलना चाहते हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सभी नवनिर्वाचित 48 विधायकों और सांसदों की बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता का काम करने के दिशा निर्देश दिए। सुश्री आतिशी ने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पर अपना भरोसा जताया है और अब विधायकों की जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाना हमारी जिम्मेदारी है।
इस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जो भी लोगों के काम हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। हमारी ये जिम्मेदारी है एक अपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना।
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ नहीं खोया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सफलतापूर्वक सरकार बनी है।
कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी कामयाब होती हुई इन चुनावों में दिखी, सरकार अब उनकी बनी है।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। श्री चहल ने कहा कि दिल्ली में यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और गारंटी में लोगों के विश्वास का परिणाम है।
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि मां यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता रहेगी, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, दिल्ली की टूटी सड़कें, हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी मिल जाए और सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो जाए, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान अधिसूचना और निर्वाचित प्रत्याशियों की सूची दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दी है। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अजय कुमार और दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी R. Ellis Voss द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के सचिव BC पात्रा और दिल्ली के विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार भी उपस्थित थे। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि इस प्रस्तुतीकरण के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से संपन्न हो गई है। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। 9 दिवसीय इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में लगभग 2000 से अधिक प्रकाशकों और 1000 वक्ताओं ने हिस्सा लिया।
भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस वर्ष के पुस्तक मेले का विषय हम भारत के लोग था। रूस इस मेले का मुख्य देश रहा। 9 दिन के इस मेले में फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और कोलंबिया सहित 50 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। शैक्षणिक पुस्तकों और उपन्यासों से लेकर जीवनी और कॉमिक पुस्तकों तक मेले में विभिन्न विधाओं की पुस्तकों की भरमार थी। इसके अतिरिक्त पुस्तक मेले में लेखकों की चर्चाएं, पुस्तक विमोचन, साहित्यिक सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए चंदन नाम के एक आगंतुक ने पुस्तकों के भव्य मेले को लेकर अपना अनुभव साझा किया।
हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पे। हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, उसके विकास के लिए पुस्तक मेला अच्छा है बहुत। मैंने बहुत सारे लेखकों की किताबों को खरीदा है, जैसे डार्क हॉर्स है और भी बाकी सारे काफी सारी किताबें।
मेले के अंतिम दिन भारी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के कई क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। आज चंडीगढ़ में सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर जिले में सधौरा निर्वाचन क्षेत्र और अम्बाला जिले के नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 12 सड़कों के निर्माण पर 9 करोड़ 3 लाख 18 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। करनाल जिले के घुघरीपुर में कैथल रोड से मुनक रोड तक पश्चिमी बाईपास के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 30 हजार की संशोधित राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पानीपत सफेदों जींद रोड को 4 लेन में बनाने और सफेदों से जींद तक की सड़क को चौड़ी करने के लिए 184 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव सुदीप जैन और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रिहान परिचर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित विशेषज्ञ से सौर ऊर्जा और इसके लाभ तथा इससे संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर तथा #AskAIR के साथ सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली में आज धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। हालांकि कल सुबह हल्की धूप छाने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना त्यागपत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की CAG रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।